द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम ढेरों रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल से वो काम की बातें निकालने वाले हैं जो जो सच में दिलचस्प हैं।
बिल्कुल। और आज का विषय तो मतलब एक ऐसे मजाक से शुरू होता है जो काफी आम है।
हाँ, मतलब मान लीजिए किसी चर्च में बाइबल स्टडी का एक बहुत ही लंबा सेशन अभी अभी खत्म हुआ है।
सही कहा।
लोगों ने यूहन्ना या रोमियो की किताब पर महीनों तक चर्चा की है और तभी पीछे से कोई हाथ उठाकर पूछता है, तो अगला क्या पढ़े? लेवी व्यवस्था, मतलब लेविटिकस।
और फिर पूरे कमरे में हंसी गूंज उठती है।
एकदम। पश्चिमी दुनिया के ज्यादातर ईसाई इस मजाक को तुरंत समझ जाते हैं।
हाँ, क्योंकि आधुनिक सोच में और खासकर प्रोटेस्टेंट नजरिए से देखें तो इस किताब को बहुत ही उबाऊ माना जाता है।
अजीबो गरीब नियम कानूनों से भरी हुई।
बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ये सच्चे धर्म के रास्ते की रुकावट है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे जैसे ये किसी और ही दुनिया की बातें कर रही है।
इसीलिए आज के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारे इस डीप डाइव कमीशन इसी धारणा को चुनौती देना है।
हाँ, और इसके लिए हम डॉक्टर डेविड डी सिल्वा के एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सही कहा। उनका लेक्चर जो पवित्रता और अपवित्रता पर है, इन स्रोतों को खंगालने पर पता चलता है कि प्राचीन इसराइलियों के लिए पवित्रता और अपवित्रता के नियम महज कुछ खोखले कर्मकांड नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं थे।
ये असल में पूरे ब्रह्मांड को देखने का एक नजरिया था। और मैं बता दूं, ये विषय उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।
हाँ, पर इसे समझने के लिए ना हमें पहले प्राचीन इसराइलियों की मानसिकता में उतरना होगा।
वो कैसे?
इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम आज के आधुनिक समाज के पवित्रता के नियमों पर गौर करें, क्योंकि देखिए, कोई भी समाज बिना नियमों के नहीं चलता। मानव विज्ञान में से
गंदगी की जगह वाला सिद्धांत।
हाँ, डर्ट आउट ऑफ प्लेस का सिद्धांत।
अच्छा, इसे अगर थोड़ा और खोला जाए तो मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई चीज कहाँ मौजूद है। जैसे मान लीजिए एक कप मिट्टी लेते हैं। अगर वो मिट्टी किसी बगीचे में पड़ी है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, वो प्रकृति का हिस्सा है।
सही बात है। लेकिन अगर वही मिट्टी घर के बाहर आपके ड्राइवे पर गिर जाए तो
लोग शायद उसे नजरअंदाज कर दें।
बिल्कुल। हम सोचते हैं कि चलो बारिश आएगी या हवा चलेगी तो साफ हो जाएगी, वो उतनी खटकती नहीं है।
पर अगर वही एक कप मिट्टी घर के अंदर आपके लिविंग रूम के साफ सुथरे सफेद कालीन पर गिर जाए तो?
अरे, फिर तो वैक्यूम क्लीनर तुरंत बाहर आ जाएगा।
एकदम, क्योंकि वो मिट्टी अब सिर्फ मिट्टी नहीं रही, वो गंदगी बन गई है।
जबकि उसकी रासायनिक संरचना में तो कोई बदलाव नहीं आया, वो वही मिट्टी है जो बगीचे में थी।
फर्क सिर्फ यह है कि वो अब अपनी तय जगह पर नहीं है। मतलब जब चीजें उस जगह से बाहर आ जाती हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, तो वे व्यवस्था को बिगाड़ती हैं।
हाँ, और वो हमें परेशान करती हैं। और यही बात हमारे खान पान पर भी पूरी तरह से लागू होती है।
कैसे?
देखिए, कई आधुनिक संस्कृतियों में लोग गाय, मुर्गी या सुअर का मांस बिना किसी हिचकिचाहट के खाते हैं।
हाँ, आम बात है।
पर अगर उसी मेज पर कुत्ते का मांस परोस दिया जाए तो लोगों को तीव्र घिन आने लगेगी।
अरे बाप रे। हाँ,
ये कोई तार्किक बात नहीं है, ये एक सांस्कृतिक टैबू है।
हमने कुछ जानवरों को भोजन की श्रेणी में रखा है और कुछ को पालतू जानवरों की श्रेणी में।
बिल्कुल। और जब ये श्रेणियां आपस में टकराती हैं तो हमें घबराहट होती है।
खाने के गिरने के मामले में भी ये बहुत साफ दिखता है। अगर किचन के काउंटर पर सेब का एक टुकड़ा गिर जाए तो इंसान उसे उठाकर सीधे खा लेता है।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर वही टुकड़ा जमीन पर गिर जाए तो वो सीधे कूड़ेदान में जाएगा,
या फिर कोई 5 सेकंड रूल का बहाना बनाकर उसे धोके खा लेगा।
हाँ, क्योंकि जमीन पर गिरने से वो अछूत हो गया।
अगर कोई व्यक्ति तेज सर्दी से जूझ रहा है, खांस छींक रहा है और वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े तो सामने वाले का हाथ तुरंत
सैनिटाइजर ढूंढने लगता है।
हाँ, हम शारीरिक तरल पदार्थों और कीटाणुओं से बचने के लिए एक अदृश्य घेरा बनाकर रखते हैं।
तो क्या डॉक्टर डी सिल्वा का रिसर्च यही कह रहा है कि प्राचीन इसराइली लोग असल में सिर्फ जमोफोब थे? मतलब क्या लेविया व्यवस्था सिर्फ एक प्राचीन हेल्थ मैनुअल है?
डॉक्टर डी सिल्वा के लेक्चर में इस बात का बहुत ही स्पष्ट खंडन किया गया है।
अच्छा।
हाँ, इसे मेडिकल या कीटाणुओं के नजरिए से देखना सबसे बड़ी भूल है। प्राचीन दुनिया के लोगों को जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
तो फिर वो किस चीज से डरते थे?
उनका डर कीटाणुओं के संक्रमण का नहीं था, उनका डर ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी कॉस्मिक ऑर्डर के बिगड़ने से जुड़ा था।
ब्रह्मांडीय व्यवस्था?
हाँ।
उनका मानना था कि अपवित्र होकर वे एक पवित्र ईश्वर के सामने जाने के अयोग्य हो जाएंगे।
मतलब सुअर का मांस इसलिए वर्जित नहीं था कि उससे कोई बीमारी फैलेगी।
बिल्कुल नहीं।
वो इसलिए मना था क्योंकि उनके ब्रह्मांडीय नक्शे में वो जीव व्यवस्था के खिलाफ था।
ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर कीटाणुओं का डर नहीं था तो ईश्वर की उपस्थिति इतनी डरावनी क्यों थी कि उसके लिए इतने सारे नियम बनाने पड़े?
इसके लिए ना हमें पवित्र शब्द की प्राचीन समझ को डीकोड करना होगा।
हाँ,
आज के समय में हम सोचते हैं कि पवित्र का मतलब है सिर्फ नैतिक रूप से अच्छा या शुद्ध होना।
हाँ, हम तो यही मानते हैं।
लेकिन प्राचीन इसराइलियों के लिए पवित्र का अर्थ था जो सामान्य से बिल्कुल अलग है, जो पूर्ण है और जिसमें अथाह शक्ति है।
अच्छा।
ईश्वर की ये पवित्रता एक ऐसी ऊर्जा थी जो जीवन और वरदान दे सकती थी, लेकिन अगर कोई बिना तैयारी के इसके संपर्क में आ जाए तो ये विनाशकारी भी हो सकती थी।
स्रोत में यशायाह नबी के अनुभव का जिक्र है। जब उन्हें एक दर्शन में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ तो उनकी पहली प्रतिक्रिया खुशी या शांति की नहीं थी।
हाँ, वो तो बुरी तरह डर गए थे।
उन्हें लगा कि अपनी और अपने समाज की अपवित्रता के कारण वे ईश्वर की इस उग्र पवित्रता के सामने भस्म हो जाएंगे।
और उनका वो डर जायज था।
इसे हम एक आधुनिक वैज्ञानिक रूपक से समझ सकते हैं।
हाँ, वो स्टार ट्रेक वाला उदाहरण।
बिल्कुल वही। जैसे स्टार ट्रेक की दुनिया में स्पेसशिप एंटरप्राइज को चलाने के लिए मैटर और एंटी मैटर का इस्तेमाल होता है। जब तक वे अलग हैं सब ठीक है, लेकिन अगर वे अनियंत्रित रूप से टकरा जाएं तो भयंकर विस्फोट होता है।
एकदम सही।
और प्राचीन यहूदी सोच में परम पवित्रता और मानव अपवित्रता का बिना किसी मध्यस्थ के एक साथ आना कुछ वैसा ही विनाशकारी माना जाता था।
तो इसी विनाश से बचने के लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को चार मुख्य श्रेणियों में बांट दिया था।
हाँ, पहली जोड़ी थी पवित्र बनाम सामान्य,
मतलब होली और कॉमन। हाँ, पवित्र वो था जो ईश्वर से जुड़ा था और सामान्य वो जो रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था।
और दूसरी जोड़ी
स्वच्छ बनाम अस्वच्छ या अपवित्र, यानी क्लीन और अनक्लीन।
तो इन श्रेणियों में एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कहाँ बिताता था?
ज्यादातर आम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में स्वच्छ और सामान्य की श्रेणी में आते थे।
अच्छा।
वे ना तो मंदिर के याजकों की तरह अत्यधिक पवित्र थे और ना ही किसी अपवित्रता के कारण अस्वच्छ थे। वे बस बीच की स्थिति में रहकर अपना जीवन चलाते थे।
और अपवित्रता तब आती थी जब कोई चीज अपनी निर्धारित सीमा को पार करती थी।
बिल्कुल।
स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि शरीर के तरल पदार्थ जब तक शरीर के अंदर हैं सब ठीक है, लेकिन रक्त या अन्य तरल पदार्थ जब शरीर की सीमा से बाहर आते हैं तो वो सीमा का टूटना है।
और यही दायरा लांघना अपवित्रता कहलाता था। देखिए, सीमाएं लांघना ही अव्यवस्था पैदा करता है। ईश्वर ने दुनिया की रचना करते समय हर चीज की एक जगह तय की थी। जब कोई चीज अपनी जगह छोड़ती है तो वो सृष्टि की मूल व्यवस्था को चुनौती देती है।
तो अगर दायरों और सीमाओं का टूटना ही अव्यवस्था है तो इसका जानवरों की बनावट से क्या लेना देना है?
बहुत गहरा लेना देना है।
डॉक्टर डी सिल्वा के लेक्चर में लॉबस्टर यानी झींगा मछली के अस्वच्छ होने का जो कारण बताया गया है वो इसी श्रेणी के मिश्रण पर आधारित है ना?
हाँ, उत्पत्ति की किताब के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि को बहुत स्पष्ट श्रेणियों में बांटा है।
जैसे
आकाश के पक्षी, जमीन के जानवर और समुद्र के जीव।
बिल्कुल।
और जो जीव पानी में रहते हैं उनके पास तैरने के लिए पंख और शल्क होने चाहिए। ये पानी के जीवों की एक आदर्श बनावट है।
और लॉबस्टर इस व्यवस्था में फिट नहीं बैठता।
एकदम सही पकड़ा आपने।
वो समुद्र के तल में रहता है, पानी में जीवन बिताता है, लेकिन उसके पास मछली जैसे पंख नहीं है। वो जमीन के जानवरों की तरह अपने पैरों पर चलता है।
तो प्राचीन इसराइलियों की नजरों में वो दो अलग अलग श्रेणियों को मिला रहा है।
वो अपनी निर्धारित जगह और बनावट से बाहर है।
हाँ, इसलिए वो सृष्टि की व्यवस्था का उल्लंघन है और नतीजतन अस्वच्छ है। और इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए नियम सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं थे।
अच्छा।
दो अलग अलग तरह के बीज एक ही खेत में नहीं बोने चाहिए। ऊन और लिनन जैसे दो अलग तरह के धागों को मिलाकर कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
मतलब हर चीज की एक शुद्ध श्रेणी होनी चाहिए।
बिल्कुल।
पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।
हाँ।
आधुनिक दिमाग इस बात को आसानी से पचा नहीं पाता।
वो कैसे?
देखिए, लेवी व्यवस्था में एक तरफ लिखा है कि मिश्रित धागे के कपड़े मत पहनो, और उसी के आसपास ये भी लिखा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, व्यापार में सही वजन का इस्तेमाल करो और बदला मत लो।
हाँ।
आज के दौर में हम व्यापार में धोखा देने को एक गंभीर नैतिक अपराध मानते हैं, जबकि दो तरह के धागे पहनना तो महज एक फैशन की पसंद है। हम नैतिकता और कर्मकांड को दो अलग अलग डब्बों में रखते हैं। क्या प्राचीन लोग ये फर्क नहीं समझते थे?
पहली सदी के यहूदी समाज के लिए नैतिक नियम और कर्मकांडीय नियम के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं थी।
अच्छा, कोई फर्क नहीं था?
नहीं, वे जीवन को अलग अलग डब्बों में बांटकर नहीं देखते थे। उनके लिए जीवन एक संपूर्ण इकाई था। व्यापार में धोखाधड़ी करना किसी इंसान के खिलाफ अपराध होने से पहले ईश्वर के ब्रह्मांडीय व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था।
और किसी मृत जानवर को छूना भी उसी व्यवस्था का उल्लंघन था?
बिल्कुल।
यानी दोनों ही मामलों में इंसान ने उस सीमा को लांघा है जो ईश्वर ने तय की थी। डॉक्टर डी सिल्वा के नोट्स में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि इन दोनों ही गलतियों के लिए एक ही तरह के प्रायश्चित की जरूरत होती थी, कोई फर्क नहीं था।
और चूंकि हर एक कार्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ा था, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विस्तृत नक्शे बनाए गए थे।
नक्शे?
हाँ, ये नक्शे हवा में नहीं थे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, लोगों, जगहों और समय को गहराई से नियंत्रित करते थे।
तो लोगों के नक्शे से शुरुआत करते हैं। ये नक्शा एक पिरामिड की तरह था जहाँ पवित्रता के स्तर तय किए गए थे। इस नक्शे के सबसे बाहर गैर यहूदी थे जो इस पवित्रता के दायरे में आते ही नहीं थे। उसके बाद आम इसराइली आते थे जो सामान्य रूप से स्वच्छ थे।
और फिर उन इसराइलियों में से लेवी चुने गए थे जो मंदिर के कामों के लिए अलग किए गए थे और अधिक पवित्र थे।
और लेवियों के अंदर से याजक आते थे जो वेदी पर बलियां चढ़ा सकते थे।
बिल्कुल। और उस पिरामिड के सबसे ऊपर एक अकेला व्यक्ति होता था, महायाजक,
हाई प्रीस्ट।
हाँ, खतना जैसी प्रथा को महज एक शारीरिक निशान नहीं माना जाता था, बल्कि वो इस नक्शे का एक स्थायी प्रमाण था कि ये समूह बाकी दुनिया से अलग किया गया है।
ये वर्गीकरण सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं था, ये उस जगह पर भी लागू होता था जहाँ वे रहते और पूजा करते थे। यरूशलेम के मंदिर का लेआउट तो मानो इस पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे का एक 3D मॉडल था।
एकदम सही। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकता था। मंदिर का ढांचा एक के अंदर एक बने दायरों की तरह था।
सबसे बाहरी हिस्सा गैर यहूदियों का आंगन था जहां दुनिया का कोई भी इंसान आ सकता था।
उसके आगे एक दीवार थी जिसे पार करने पर महिलाओं का आंगन आता था। वहां से आगे सिर्फ इजरायली पुरुष जा सकते थे।
और उसके बाद की जगह सिर्फ याजकों के लिए आरक्षित थी जहाँ वेदी रखी थी।
और सबसे आखिर में मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा कमरा था, परम पवित्र स्थान,
होली ऑफ होलीज।
हाँ, ये वो जगह थी जहां ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती थी। यहां साल में सिर्फ एक बार सिर्फ महायाजक जा सकता था, वो भी ढेरों शुद्धिकरण के बाद।
तो अगर कोई व्यक्ति अपनी तय सीमा को लांघकर अंदर जाने की कोशिश करता तो क्या होता?
इसे अतिक्रमण माना जाता था। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर सीधा हमला था और इसका अंजाम मौत हो सकता था।
अरे बाप रे।
2 मैकाबीज की किताब में हेलियोडोरस की जो घटना है वो इसे बहुत नाटकीय रूप से दर्शाती है।
हाँ, हेलियोडोरस एक गैर यहूदी सेनापति था। सत्ता के नशे में चूर होकर उसने मंदिर के उन पवित्र हिस्सों में घुसने की कोशिश की जहाँ गैर यहूदियों का जाना सख्त मना था।
वो महज एक इमारत के अंदर नहीं जा रहा था, वो पवित्रता के नक्शे को तोड़ रहा था।
और कहानी बताती है कि जैसे ही उसने ऐसा किया, स्वर्गदूतों ने घोड़ों पर सवार होकर आकर उसे बुरी तरह पीटा।
वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से भाग सका।
मतलब ये कहानी इस बात का प्रतीक थी कि पवित्रता के दायरों के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल। और लोगों और जगहों के अलावा समय का भी एक स्पष्ट नक्शा था।
साल के सभी दिन एक समान नहीं थे।
सप्त का दिन?
हाँ, सप्त का दिन सप्ताह के बाकी 6 दिनों से पूरी तरह अलग किया गया था। वो समय का एक पवित्र हिस्सा था। तो सप्त के दिन काम करना सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था, वो समय के दायरे का उल्लंघन था जिसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान था।
सही कहा। देखिए, जगह, समय और लोगों के दायरों को समझना तो आसान है क्योंकि वे दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत भोजन को भी इस नक्शे में गहराई से पिरोया गया था।
जैसे खून न खाना, सिर्फ जुगाली करने वाले और फटे खुर वाले जानवर ही खाना। पर ये नियम इतने जटिल क्यों थे? क्या ये सिर्फ ईश्वर के आदेश थे या इनका समाज पर कोई असर भी हो रहा था?
इनका बहुत गहरा व्यावहारिक असर था। डॉक्टर डी सिल्वा इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं।
सोशल इंजीनियरिंग?
हाँ, भोजन के ये कड़े नियम एक अदृश्य दीवार का काम करते थे। अगर किसी समाज के खाने के नियम इतने जटिल हैं तो उस समाज का व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति के घर जाकर आसानी से दावत नहीं उड़ा सकता।
हाँ, वो उनके साथ बैठ के रोटी नहीं तोड़ सकता।
और जब साथ बैठकर खाना ही मुमकिन नहीं है तो सामाजिक मेलजोल, शादियाँ और सांस्कृतिक मिश्रण अपने आप रुक जाता है।
तो जब इजरायली लोग डायस्पोरा में थे, यानी अपनी मातृभूमि से दूर अन्य देशों में बस गए थे, तो उन्हें अपना वजूद बचाए रखने के लिए अपने खुद के अलग बाजार बनाने पड़े।
बिल्कुल, जहां शुद्ध और नियमों के हिसाब से तैयार किया गया भोजन मिल सके। इसी कारण से वे लोग सदियों तक बाहरी दुनिया में रहने के बावजूद उस दुनिया में घुले मिले नहीं। उनके भोजन के नियमों ने उन्हें एक एकजुट समाज बनाए रखा।
वाह।
और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेरी डगलस ने अपनी प्रसिद्ध किताब प्योरिटी एंड डेंजर में इस धारणा को एक नया आयाम दिया है, जिसे बाउंडेड सिस्टम कहा जाता है।
हाँ, मैरी डगलस का तर्क सच में सोचने पर मजबूर करता है। उनका कहना है कि इंसान का शरीर और उसकी त्वचा महज एक जैविक आवरण नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज या राष्ट्र की सीमाओं का प्रतीक बन जाता है।
बिल्कुल।
इसे समझने के लिए किसी देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स और इमिग्रेशन कंट्रोल की कल्पना की जा सकती है।
ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। जिस तरह एयरपोर्ट पर इस बात की कड़ी निगरानी होती है कि देश की सीमा के अंदर कौन आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है,
उसी तरह प्राचीन यहूदी समाज में इस बात की कड़ी निगरानी होती थी कि शरीर के अंदर क्या जा रहा है, मतलब भोजन, और शरीर से बाहर क्या आ रहा है, मतलब तरल पदार्थ।
हाँ, शरीर के अंदर आने जाने वाली चीजों पर नियंत्रण असल में बाहरी दुनिया के खतरों से राष्ट्र को बचाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका था। शरीर की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतीक थी।
इस नजरिए से फरीसियों का व्यवहार पूरी तरह से समझ में आने लगता है। अक्सर ऐतिहासिक कहानियों में फरीसियों को इस बात के लिए घमंडी या कठोर बताया जाता है कि वे सिर्फ अपने ही समूहों के लोगों के साथ खाना खाते थे।
हाँ, बाहरी लोग या अस्वच्छ लोगों के साथ बैठना उन्हें मंजूर नहीं था।
लेकिन अगर हम बाउंडेड सिस्टम और अप्रत्यक्ष अपवित्रता की अवधारणा को समझें, तो वे कोई अहंकार नहीं दिखा रहे थे।
नहीं, वे अहंकार नहीं दिखा रहे थे। अप्रत्यक्ष अपवित्रता यानी सेकेंडरी पोल्यूशन एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है।
अच्छा।
अगर किसी अस्वच्छ व्यक्ति ने किसी कुर्सी को छुआ है और कोई दूसरा व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ जाए, तो वो दूसरा व्यक्ति भी अस्वच्छ हो जाएगा।
तो फरीसी लोग सिर्फ इस चेन रिएक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
हाँ, वे अपने सामाजिक दायरे और अपनी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को टूटने से बचाने के लिए एक सख्त सीमा रेखा खींच रहे थे।
डॉक्टर डिसिल्वा के लेक्चर में एक ऐसी बात भी सामने आती है जो अपवित्रता को लेकर बनी सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ देती है। आधुनिक लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि अपवित्र होना कोई पाप था, कोई ऐसी बुरी चीज जिससे हर हाल में बचा जाना चाहिए।
असल में अपवित्रता कोई पाप नहीं थी। महिलाओं का मासिक धर्म, वैवाहिक जीवन या किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर उसके शव को दफनाना, ये सब जीवन के स्वाभाविक और जरूरी हिस्से थे।
मतलब कोई भी इंसान इनसे पूरी तरह बच नहीं सकता था।
बिल्कुल नहीं, और ना ही ईश्वर की ये मांग थी कि इंसान कभी अपवित्र न हो।
तो मुख्य मुद्दा अपवित्र होने से बचना नहीं था, बल्कि ये था कि जब कोई व्यक्ति अपवित्र हो तो उसे छिपाया ना जाए।
हाँ, उस स्थिति को स्वीकार किया जाए और समय आने पर उचित कर्मकांड के जरिए उसका शुद्धिकरण किया जाए। अपवित्रता की तुलना एक तरह के कचरे से की जा सकती है जो स्वाभाविक रूप से पैदा होता है।
अगर उसे समय पर साफ ना किया जाए तो वो जमा होता रहेगा और एक दिन पूरे घर को यानी पूरे राष्ट्र को प्रदूषित कर देगा,
जिसके कारण जमीन उन्हें बाहर फेंक सकती थी। इसलिए अपवित्रता एक अवस्था थी जिसे बस रीसेट करने की जरूरत होती थी।
जैसे जैसे समय बीता और सदियां गुजरी, प्राचीन यहूदी समाज में बदलाव आने लगे। स्रोत के आखिरी हिस्से में बताया गया है कि जब लोग ग्रीक और रोमन संस्कृतियों के संपर्क में आए, तो इन पुराने कड़े शारीरिक नियमों को समझाना मुश्किल होने लगा।
हाँ, इसलिए बाद के लेखकों ने इन नियमों की नई दार्शनिक व्याख्याएं शुरू कर दी,
जैसे लेटर ऑफ एरिस्टियस जैसे किताबों में।
बिल्कुल। वहाँ ये तर्क दिया गया कि भोजन के नियम असल में नैतिकता सिखाने के लिए है। उदाहरण के लिए, गिद्ध या अन्य शिकारी पक्षियों को न खाने का नियम ये सिखाता है कि इंसानों को कमजोरों का शोषण नहीं करना चाहिए।
और इसी तरह फो मैकबीज जैसी किताबों ने कहा कि स्वादिष्ट सुअर का मांस या सीफूड खाने से खुद को रोकना असल में आत्मनियंत्रण और अनुशासन की ट्रेनिंग है।
हाँ, उन्होंने शारीरिक नियमों को रूपक में बदल दिया।
तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर प्राचीन काल में खान पान, छुआछूत और जगह समय की ये नियम सिर्फ ईश्वर के क्रोध से बचने के लिए नहीं थे, बल्कि समाज में ये तय करने के लिए थे कि कौन हमारे अंदर है और कौन बाहर,
Who is in and who is out?
हाँ, तो ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के आधुनिक समाजों में, कॉरपोरेट ऑफिसों में या सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स में, जहाँ लोग सोचते हैं कि वे बहुत तार्किक और वैज्ञानिक हो गए हैं,
वहाँ भी कई अलिखित पवित्रता के नियम काम कर रहे हैं।
तो या किस तरह के पहनावे को स्वीकार्य माना जाएगा और किसे अस्वीकार्य।
और जब कोई व्यक्ति समाज के तय किए गए वैचारिक दायरों से बाहर जाता है तो उसे अक्सर अछूत करार दे दिया जाता है
या उसे कैंसिल कर दिया जाता है, कैंसिल कल्चर।
बिल्कुल।
शायद आधुनिक इंसान ने प्राचीन कर्मकांडों को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन सीमाओं को खींचने, लोगों को बाहर निकालने और अपनी एक अलग पवित्र व्यवस्था बनाए रखने की वो इंसानी फितरत आज भी वैसी ही है।
हाँ, ब्रह्मांडीय व्यवस्था बदल गई होगी, लेकिन इंसान आज भी अपने चारों तरफ की दुनिया को नियंत्रित करने के लिए नए नए नक्शे बना ही रहा है।
ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, आज के डीप डाइव में बस इतना ही।